ایک سورہ فاتحہ مرحومہ نثار بانو جن پہ علی حسن بہو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاعد بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سلام عزیزان محترم، تین راتوں پر مشتمل اس سلسلے گفتگو کے لیے میں نے سورہ حم میم سجدہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ حم میم سجدہ قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورہ کی 53ویں آیت ہے۔ پروردگار نے عجیب طریقے سے یہ ارشاد فرمایا کہ سنریہم آیاتنا، ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے آیاتنا اپنی نشانیوں کو، پھر آفاق کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی۔ عجیب تیور ہے، سنریہم ہم دکھلاتے رہیں گے آیاتنا اپنی نشانیوں کو، پھر آفاق پوری کائنات میں، وفی انفسہم اور ان انسانوں کے نفسوں میں۔ بہت بہت حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان دیکھنے والوں پر واضح ہو جائے گا کہ اس پوری کائنات میں حق صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں، اس کے علاوہ ہر شے باطل ہے، حق صرف وہ ہے۔ اب لم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا اللہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کا گواہ ہے، کائنات کی ہر شے کا گواہ ہے۔ آیات نشانیاں، آیت نشانی، آفاق جمع ہے افق کی، آفاق یعنی کائنات، انفس یعنی انسان کے نفس۔ ذرا سی توجہ تمہیدی منزل پر درکار ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، ہر وہ شے جو اللہ کے وجود کی دلیل بن جائے وہ قرآن کی اصطلاح میں آیت ہے۔ نوجوان دوست، اس جملے کو میرے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں کہ آیت کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، آیت کے معنی نشانی، ہر وہ چیز کائنات کی جو اللہ کے وجود کی دلیل بن جائے وہ आया है, ठीक है ना। हम अपनी अपने वजूद की दलीलें कायनात में भी दिखलाते रहेंगे और नफ्सों में भी दिखलाते रहेंगे। आज की दुनिया, बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए, आज की दुनिया यानी आज की दुनिया से मुराद सिर्फ कराची की दुनिया नहीं, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं। कहते हैं कि भाई जो चीज मुशाहदे के रेंज में आ जाए वो तो है, और जो मुशाहदे के रेंज में ना आए वो नहीं है। सुनना भाई बहुत आराम से सुनना, किसी के मंदिर तमीज में किसी मसले को हल करना चाह रहा हूँ। उनका भाई मैं नजर आ रहा हूँ आपको, आप नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हैं, लेकिन जो चीज नजर ना आए फरिश्ता जन्नत दौज़ख अल्लाह वो हमारे लिए नहीं। तो बुनियाद बनाया उन्होंने आंख को, तो जो चीज आंख की रेंज में आ जाए तो है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूँ और अपने उसको गुफ्तगू से हट के, लेकिन चाहूंगा कि ये फिक्र पहुंच जाए मेरे सुनने वालों तक। अच्छा भाई, तो अब ये बताओ कि अल्लाह कहता है कि निशानियां दिखलाएंगे तुम्हारे नफ्सों में, ठीक है, तवज्जो रखना, आप हैं या नहीं है? तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं है, हम यही कहेंगे ना है। अच्छा मैं हूँ भाई, क्या दही क्या, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पांव है, ये मेरा गला है, ये मेरी आंखें, ये मेरा सर है, उसके अंदर माउस है, यही तो है ना। तो मेरा सर, मेरा मांस, मेरी गर्दन, मेरा गला, मेरे हाथ, मेरा पांव, मैं कहाँ हूँ? मुझे तुम अपने आप को दिखला दो, तो भाई हाथ तो दिखला सकते हो, पाँव दिखला सकते हो, ठीक है ना, आंखें अपनी दिखलाओ, सर अपना दिखला दो, तुम कहाँ हो? कहा मैं हूँ तो, लेकिन कहाँ हूँ ये मुझे खुद नहीं मालूम। तो इनकार कर दो कि तुम नहीं हो, इनकार कर दो भाई, जब तुम नजर नहीं आ रहे हो, तुम्हारा हाथ नजर आ रहा है, तुम्हारा पाँव नजर आ रहा है, तुम्हारे कान नजर आ रहे, तुम्हारी नाक नजर आ रही, तुम नजर नहीं आ रहे हो, तो इनकार कर दो, कहा नहीं मैं हूँ। बस नजर नहीं आ रहे हो मगर हो, अपने आप को मानते हो, उसे मानने के लिए तैयार नहीं। कोई इंसान दुनिया का यह नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को दिखला सकता हूँ। बहुत ज्यादा तीर मारेगा तो अपने आधा को दिखला देगा कि मेरे हाथ है, ये मेरे पांव, यही है ना। अच्छा भाई, तो अब तुम नजर नहीं आ रहे हो मगर यकीन है कि हो, ठीक है ना भाई, तवज्जो रखना। अगर अल्लाह को समझना चाह रहे हो ना, इसलिए अल्लाह कहता है मैं अपनी निशानियां अपने नफ्सों में दिखलाता हूँ। तो ये नफ्सों देखो, ये क्या अजीब गरीब मरहले फिक्र, जिस तरीके से तुम, बहुत तवज्जो रखना, जिस तरीके से तुम हो मगर नजर नहीं आते, तुम्हारे आजाद जवारे नजर आ रहे हैं, इसी तरीके से वो है। अच्छा, कभी सोने का तजर्बा किया और नींद में ख्वाब देखा? नींद में जब इंसान ख्वाब देखता है तो बगैर आंखों के देखता है, बगैर आंखों के देखता है, बगैर कानों के सुनता है, बगैर जबान के बोलता है। तो अगर अगर ये ख्वाब समझ में आ जाए तो ये पूरा फलसफा है खुदा की सिफात को समझने के लिए। मैंने चाहा कि अगर डिफरेंट तरीके से अपने सुनने वालों को यह आय मुबारक पेश करूं, तो आराम से सुनना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मंजिल तमीज में, लेकिन ये बातें जरूरी हैं और तुम्हें कहीं ले जाना मकसूद है। अच्छा भाई, तो अब यह नफ्स तो तुम्हारी समझ में आ गया ना, नफ्स तो है तुम्हारे अंदर, ठीक। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जिस्म में नफ्स है, अगर न होता तो ये यहाँ चोट लगे तो तकलीफ न होती, यहाँ अगर चोट लगे तो तकलीफ न होती, ठीक है। इसका मतलब हर जगह है नफ्स, कोई उसका मरकज तो मुअज्जिन करके बतला दो। नहीं भी मरकज कोई नहीं है लेकिन हर जगह है मरकज, मरकज उसका कोई नहीं है मगर हर जगह है। क्या आप भी खुदा समझ में नहीं आता? सुनते चलो, जगह दस में ज्यादा रुकूंगा नहीं। सनूरी हिम आयातना फिराफाक वही अनफ से हिम, ये नफ्स अगर समझ में आ गया तो मैं यही तो आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा भाई, तो अब नफ्स की अहमियत तुम्हारी समझ में आ गई कि है मगर कोई मुअय्यन मकाम नहीं है। सुनना भाई, अगर अगर ये जुमला मेरे नौजवान दोस्तों तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरी आज की मेरा स्वार्थ है। भाई देखो, पांव मेरे दिमाग से दूर है, ठीक। अगर तुम दिमाग को नफ्स का मरकज समझो तो पांव में जब चोट लगे तो यहाँ खबर देर में होनी चाहिए, और सर में जब चोट लगे तो जल्दी खबर हो जानी चाहिए। होता नहीं है, पूरे जिस्म में फासला कोई चीज नहीं है, नफ्स हर जगह है और हर एक से करीब है। नफ्स हर जगह है और हर एक से करीब है। तो अब अल्लाह ने नफ्स को दलील बनाया, हर इंसान को एक नफ्स दिया। बहुत बहुत तवज्जो रखना, मेरे पास चार नफ्स तो नहीं है, ये थे, आपके पास भी एक नफ्स है, हर इंसान को एक नफ्स दिया। लेकिन मैं क्या करूं कि पूरी कायनात को अल्लाह ने एक एक नफ्स बांटा, मोहम्मद अकेला है जिसे दो नफ्स दिए। पूरी कायनात में हर इंसान को एक नफ्स दिया, अकेले मोहम्मद अरबी को दो नफ्स दिए, एक जिस्म के अंदर एक एक जिस्म के बाहर। बस बहुत तवज्जो रखना, इसलिए ये वो मरहले फिक्र है जहाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। अल्लाह सूरह ज़ुमर 39वां सूरह कुरान का, और बड़ी मशहूर आयत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह यतवफ्फल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लज़ी क़ज़ा अलैहा अल-मौत पर युसर उखरा एरा अजल मुसम्मा। अल्लाह जब मौत का वक्त आता है तो नफ्स को जिस्म से निकाल देता है। कुरान की पॉलिसी है इसमें जिंदगी और मौत का फलसफा। अल्लाह ये तवफल अनफुसा ही न मौत है, जब मौत का वक्त आ जाए तो अल्लाह नफ्स को निकाल देता है। बहुत तवज्जो है, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और अगर मौत का वक्त ना आए सिर्फ नींद हो तो नींद में भी नफ्स को निकालता है। नींद में नफ्स किसी का किसी के साथ नहीं होता। सूरह ज़ुमर 39वां सूरह आयत जाके देख लेना। तो नींद में नफ्स निकल जाए, मौत में नफ्स निकल जाए, बस फर्क इतना है कि जब नींद पूरी हो जाए नफ्स को वापस नहीं देता है, और मौत में जब निकाले तो फिर वापस नहीं भेजता। तो मैं हूँ या आदम तक जितने भी लोग हैं वो नींद में अपने नफ्स के साथ नहीं होते। मैसेज पहुंचा, कोई हो बड़े से बड़ा हो, जब नींद में गया तो उसका नफ्स निकल गया। तो ये वो है कि जब नींद सोए तो नफ्स निकल जाए, और एक वो है जो नींद सोए तो नफ्स को बेचे। बात तो वादे हो रही है ना। अच्छा भाई, अब एक मैं रिवायात बहुत कम पढ़ता हूँ, अब यहाँ तक आ गया हूँ तो एक छोटी सी रिवायत सुनते जाओ। बस मशहूर मुहद्दिसीन ने, अब नफ्स तो तुम्हारी समझ में आ गया ना, सारे नफ्स नींद में निकल के बाहर चले जाएंगे, एक अकेला नफ्स जो मौजूद है यही तो बेचा है ना अपने आपको। अच्छा, अब बहुत बहुत तवज्जो रखना, ये अजीब गरीब मरहले फिक्र है। रसूल की सोहबत में शमरे सारत के परवाने तशरीफ फरमा है, और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और एक ने उठकर रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह आपको अपने दोस्तों में सहाबियों में सबसे ज्यादा अजीज कौन है? आगा फलान, कोई नाम दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं भी वो नाम आपकी हिम्मत पर करूँ, कोई नाम दिया। अच्छा, तशफी नहीं हुई पूछने वाली थी, फिर पूछा या रसूलल्लाह आपको अपने दोस्तों में सबसे चहिता कौन है? आगा फलान, एक और नाम ले दिया। ठीक, तीसरी मतलब फिर पूछा, क्या अजीब मरहला दिख रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपको अपने दोस्तों में अजीज कौन है? काफला, वो तीन नाम तो हो गए, चिड़ गया पूछने वाला, चिड़ गया, कहने लगा फ़ाइना अली फ़ाइना अली, ये आप अली का नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं पूछता हूँ आपका सबसे अजीज दोस्त कौन है? आप कहते हैं फलान है, फलान है, फलान है, आईना अली, अली का नाम क्यों नहीं लेते? रसूल ने उसे जवाब नहीं दिया, मुड़े अपने दूसरे साथियों की तरफ और कहने लगे इसे देखो, इन नहाजा यस अलोनी अली नफ्स, ये नफ्स में और दोस्त में अब तक फर्क नहीं समझता। अजीब मरहला फिक्र, जिस मरहला फिक्र से अपने सुनने वालों को गुजारना चाह रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे तो जाना आगे है किसी मखसूस मरहला फिक्र तक, लेकिन एक जुंदा कहे बगैर आगे भी नहीं बढ़ूंगा। तो रसूल को दो नफ दिए, एक जिस्म के अंदर एक जिस्म के बाहर, भाई अजीब अजीब मरहला फिक्र है। तुम्हें मालूम है और मुझसे बेहतर जानते हो कि मुबाहले की आयत ने इन्हें नफ्स रसूल कहा था ना, मोबाइल की आयत ने नफ्स रसूल कहा था। अभी मैं आयत पढ़ के गया हूँ, अगर उस आयत को इस आयत से जोड़ लो तो एक अजीब नतीजे तक पहुँच जाओगे। अल्लाह हो यह तवफल अनफुसा ही न मोतिया, देखो भाई जब मौत का बात आता है अल्लाह नफ्स को निकाल देता है, यानी आप इधर नफ्स इधर, यही हुआ। अब तक एक इंसान नफ्स के साथ था, जिंदा था, अल्लाह ने उस नफ्स को खींच लिया, इंसान रह गया, नफ्स भर गया, मर गया ना। तो जब तक नफ्स साथ रहेगा इंसान जिंदा, जब नफ्स निकल जाएगा इंसान मर जाएगा, ये उसूल तय हो गया। मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि आपसे बेहतर कौन जानेगा, कुल्लो नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मरता कौन है? नफ्स, ठीक है ना। तो नफ्स अगर मर गया, मैं जब तक मेरा नफ्स मेरे अंदर मौजूद है मैं जिंदा हूँ, जिस दिन नफ्स मर गया मैं भी मर गया। तो मेरी जिंदगी का दारोमदार किस चीज़ पे है? नफ्स पे है। मोहम्मद रसूलल्लाह का नस बनाया है अली को, जब तक अली मोहम्मद के साथ रहेगा रिसालत जिंदा रहेगी। मरे मरे फिक्र आसानी से तय हो रहा है ना। बहुत तवज्जो रखना, अवलम यक्फे बिरब्बिका अन्नहू अला कुल्ली शयइन शहीद, क्या तुम नहीं देखते कि पूरी कायनात उसके कंट्रोल में है? मैं अभी इसे तारुफ करा रहा हूँ आय मुबारक का, क्या तुम ये देख नहीं रहे हो कि पूरी कायनात उसके कंट्रोल में है? जहाँ चाह समुंदर बना दिया, जहाँ चाह पहाड़ बना दिए, जैसी चाहे चाहे शक्लें बना दी। भाई ऊंट को ऊंट बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, भाई इस बात को समझिएगा। यानी मुश्किल तरीन फलसफे को आसान तरीन लफ्जों में अर्ज करना चाह रहा हूँ, परवरदगार मंसूबे से काम करता है। जो शक्ल सूरत और जो मिजाज जिस काम के लिए जरूरी था, वैसे ही शक्ल भी वैसा ही मिजाज भी है। सवारी के लिए घोड़ा भी है, सवारी के लिए घोड़ा भी है, सवारी के लिए ऊंट भी है, ठीक है ना। दोनों की शक्लें अलग, दोनों का मिजाज अलग, दोनों की कैफियतें अलग, इसलिए सवारी दोनों पे होगी लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से होगी। तो जैसी जरूरत थी जिस चीज के लिए, वैसी शक्ल अदा की और वैसा मिजाज अदा किया। यानी तुम्हें जो शक्ल दी, तुमसे पूछ के नहीं दी और न चैलेंज कर सकते हो कि पर रोजगार मुझे ये शक्ल क्यों दे दी, ठीक है ना। तो निजाम तखलीक में तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, तो निजाम हिदायत में कैसे कह सकते हो कि इसे इमाम क्यों बनाया, उसे नबी क्यों बनाया। ये मरहले फिक्र आसानी से हल हो रहा है तो बस आप इस मरहले फिक्र से आगे बढ़ जाए। अच्छा अभी तख्लीक किया जैसा चाह तख्लीक किया, बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। अब मैं तौहीद से नबूवत की तरफ जाना चाह रहा हूँ, एक जुमले से जाऊंगा। तो देखो कुरान देखा मिन्हा खलकनाकुम, अरे इंसानों सुनो हमने तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया है, वह फीहा नुईदुकुम और इसी मिट्टी में तुम्हें पलटा देंगे, वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा और एक दिन फिर तुम्हें इसी मिट्टी से निकालेंगे। तो हर इंसान मिट्टी से, कोई मना कर सकता है कहने में मिट्टी से, हर इंसान मिट्टी से दरी। बहुत बहुत तवज्जो रखना, देखो जो चीज मिट्टी से बनेगी उसका साया जरूर होगा, धूप में खड़े हो जाओ अपना हाथ सामने करो देखो साया पड़ता नहीं पड़ता, मकानों के साए, बिल्डिंगों के साए देख रहे हो ना, चलती हुई गाड़ियों के साए तुम्हें नजर आएंगे। इसका मतलब है कि जो चीज मिट्टी से बनी है, जो चीज मिट्टी से बनी है उसका साया जरूर होगा। तो अब अगर किसी का साया न मिले तो फिर ये न कहना कि हम भी ऐसा बचा गए। अगर किसी का साया न मिले तो ये न कहना कि हम जैसा बशर है, लेकिन खुदा की कसम मेरा एक जुमला सुनना और जुमले को जहन में रख लेना। मैंने बहुत बात की है, बरसा बरस बात की है बशरियत पर और नूरानियत पर, खुदा की कसम मैं पैगंबर की बशरियत का मुनकिर नहीं हूँ। बशर तो है कुरान में भी है, हाल कुल तो इल्ला बशर रसूल, मैं बशर नहीं रसूल हूँ, तो बशरियत का इनकार नहीं है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये, बहुत तवज्जो रहे, बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, ये जो पैगंबर हमारे आए तो अल्लाह ने बशर को नबी बना के नहीं भेजा, नबी को बशर बना के भेजा। फिर सर हो गया ना, बशर को नबी बना के नहीं भेजा, नबी को बशर बनाया, यानी नबूवत पहले बशरियत बाद में। और अब बशरियत पे नाज न करना, पर तमस्तला रहा बशरन सभी, जिब्रील आया और एक खूबसूरत बशर की सूरत में मरियम के पास आया। अब बहस करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरी मखलूक है या नहीं, लेकिन जिब्रील तो नूरी मखलूक है ना, जिब्रील तो दो राय नहीं है, वो तो नूरी मखलूक है। पर तमस्तला रहा बशरन सबिया, वो एक खूबसूरत और मुकम्मल मर्द की सूरत में मरियम के सामने आया। कुरान है सूरह मरियम, कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिन्क इन कुन्ता तकिया, जनाब मरियम फरमाने लगी मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तुम मुत्तकी है मेरे पास से चला जा। खाला मरियम मत घबराओ, उसने जवाब दिया इन्नमा आना रसूलो रब्बे के, मरियम मत घबराओ मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ, इन्नमा आना रसूलो रब्बे के ले अहाबा लके गुलामन तकिया, और तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चा अता करूँ। खुदा की कसम रसूल है, रसूल तो है ना, और कहता क्या है कि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चा अता करूँ, ये नहीं कहता कि अल्लाह अता करे, जो रसूल हो वो बच्चा अता करने की पोजीशन में तो हो। इन्नमा आना रसूल रब्बे के ले अहबल के गुलाम ज़किया, आगे क्या आते छोड़ रहा हूँ जगह बहुत तवील हो जाएगा मसले फिक्र। आया इंसानी पैकर में आया, बशर बन के आया, तवज्जो रखना तवज्जो रखना, बशर बन के आया और मरियम न पहचान सकी, कहने लगी अल्लाह की पनाह तू कहाँ से आ गया, अगर तू मुत्तकी है परहेजगार है तो चला जाए यहाँ से, नहीं पहचाना था जिब्रील को। तो जब नूरानी मखलूक पैकरे बशरी में आ जाए तो मरियम की निगाह इस्मत नहीं पहचानती, मुल्ला की गुनहगार निगाह क्या पहचानेगी। अब यही तुम्हारे लुक से समाज के लिए तुमका कहता हुआ फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। अच्छा भाई तो कालत इन्नी मैं रहमान इनकुन तकिया, मैं अल्लाह की पना मांगती हूँ अगर मुतकिया के साथ चला जा। सुनिए ना तुमने, उसने कहा कि मरियम मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा बहुत पाको पाकीज़ा। ठीक, फिर वो चला गया। जब आया नहीं था तो नूरी मखलूक था, जब आया तो बशर बना, और जब फिर पलटा तो फिर नूर हो गया। भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। इसलिए ये बात अगर जाया हो गई तो घंटे की मेहनत स्वार्थ नहीं होगी। बहुत बहुत तवज्जो रहे। है नूरी मखलूक, ओहदा है रसूल, आया है बशर बनकर। मेरी बात मुकम्मल हो गई? है नूरी मखलूक, ओहदा है रिसालत का, आया है बशर बनकर, तो कह दो कि जिब्रील हम जैसा। ये मरहले फिक्र दूर था ना, तो अब वो नूर हो या रूह है मुतलक हो, जब पैकरे बशर में आ जाए तो बशर जैसी नुमाया होती है। अब इतनी बात तय हो गई। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूँ? क्या फिर वापस चलो? अवलम जक्से में रब्बे का नहु अला कुल्ले शय शहीद, क्या काफी नहीं है कि अल्लाह पूरी कायनात का गवाह है? बस सुनो, अल्लाह ना मिसाल से समझ में आए ना बेमिसाली से। ये जुमला जो साहिबान आदम है उन्हें मन में खलिया कर दिया। खुदा न मिसाल से समझ में आता है न बेमिसाली से समझ में आता है। भाई मिसाल तो है ही जैसा कम इसलिए है ना। अच्छा, अब बेमिसाली से कैसे समझे? ना आंख है, ना कान है, ना चेहरा है, ना सर है, ना धड़ है, समझे तो कैसे समझे? ठीक। अच्छा भाई, तो अब कोई तो था, तवज्जो रहे, अब फिक्र यहाँ से आगे बढ़िए। कोई तो था जो आया था मूसा के पास, कोई तो था ना, इनका तो नहीं कर सकते। कलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल्जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा सैका। कुरान मजीद, जब अल्लाह ने अपने नूर की एक छूट मारी। देखो भाई, जब नूर चमकेगा तो किसी जगह में चमकेगा, किसी मकान में चमकेगा, और अल्लाह है ला मकान। समझ रहे हो बात? यानी जब भी कोई नूर चमकेगा तो मकान में स्पेस से चमकेगा, और अल्लाह है ला मकान। तो फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल्जबल, जब उनके रब ने अपनी नूर की छूट डाली, अपने नूर की छूट डाली पहाड़ पर, जलहु दक्का, उसके पक्षे हो गए, वह खर्रा मूसा सैका, और मूसा बेहोश होके गिर गए। कुरान से यहाँ तक कहा, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बहुत तवज्जो रखना। अमल एक है, रद्द अमल तीन है। तीन, मूसा बेहोश हुए, तूर के पक्षे हो गए, साहबे केराम जल गए। जाओ जितनी किताबें हैं ना कसस-उल अंबिया की, उन सब में देखना कि जब वो नूर चमका था तो मूसा बेहोश हुए, टूट टूट गया, और मूसा के जो साहबे केराम थे वो जल गए। अमल एक, रद्द अमल तीन। टूर टूटा, मूसा बेहोश हुए, भाई बहुत तवज्जो दे, साहबे केराम जल गए। अब अजीब बात है कि साथी हैं, करीब के उठने बैठने वाले हैं, चले कहाँ, पास में बैठ के जल गए। पास में बैठ के जल गए ना। अच्छा भाई, तो अब अगर नबी सहाबी जैसा होता या सहाबी नबी जैसा होता तो रब्द अमर एक होता। तो टूर के पक्षे हो गए, आराम से सुनना। आज मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, किसी मरहले तक तुम्हें लेके जाना है। मूसा बेहोश हुए, टूर के पक्षे हो गए। ये टूर का के पक्षे का उड़ना कोई आसान काम नहीं है। टूट फूट गया, बिखर गए, जर्रा जर्रा बनकर वो फजाओं में बिखर गया टूर। थी। और अब अगर उर्दन में वो कोहेतूर आज पाया जाता है उर्दन में है, और अगर उसे देखने के लिए जाओ तो तुम्हें सिर्फ प्लीट नजर आएगी इसकी, ऊपर का हो गया ना। अभी लोग जाते हैं ज्यादा करने के लिए, ठीक। तो सूर प्रक्षय होकर बिखर गया। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, सूर था पत्थर पहाड़, तोड़ दिया उसे उस नूर ने। तो हमें तो कुरान में एक ही नूर मिला जो पत्थर को तोड़ता है। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ भाई, उस नूर ने जो आया था, उस नूर ने कोहेतूर को तोड़ दिया, और हमें कुरान में एक ही नूर मिला जो पहाड़ को तोड़ सकता है। लव अंजलना सूरह हशर 59 सूरह कुरान का, लव अंजलना हादा कुराना अला जबलिन लरायतहु खाशअन मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह। अगर हम पहाड़ पे तूर जैसे पहाड़ पर कुरान को उतार दें तो तूर के परखचे उड़ जाए। तो फकत कुरान में ये ताकत है कि अगर पहाड़ पे आए तो पहाड़ टूट जाए। तो नूर कुरान आया को है तूर पर, नूर कुरान आया कोहेतूर पर, तूर के प्रक्षे उड़ गए और मूसा उस नूर को बर्दाश्त न कर सके, बेहोश हो गए। अब समझ में आया मूसा और मोहम्मद का फर्क। नूर कुरान अगर मूसा पे आ जाए तो मूसा बेहोश हो जाए, और पूरा नूर कुरान अगर मोहम्मद के दिल पे आ जाए बात तो वाजे हो गई ना कि कुरान ही में इतनी ताकत है। कुरान ही भाई बहुत तवज्जो रखना, कुरान ही में इतनी ताकत है कि अगर पहाड़ पे आए तो पहाड़ टूट जाए। तो नूर कुरान आया आया ना। अब तुम्हारे शौक समाज से एक सवाल करना चाह रहा हूँ और सही जवाब देना कि भाई कुरान में इतनी ताकत है कि अगर पहाड़ पे आए तो पहाड़ टूट जाए, यानी कुरान का नूर पत्थर को तोड़ दे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि काबे की दीवार मिट्टी की थी या पत्थर की? तो आ गए मेरे साथ भाई, काबे की दीवार पत्थर की थी ना, तो जो गया वो नूरे कुरान था। अल कुरान मा अलीन अलीन अल कुरान। आई बीवी, अब जाहिर है कि मैं वाकया बयान नहीं किया सकता, लेकिन अगर जुमला आ गया है तो ये जुमला कहे बगैर मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ। बीवी आई, उसने अपने बतन मुतहर को खाने काबा की दीवार से मस किया, ठीक मतिया का इलाही इन्नी मुमिनतुन बिक। या देखना देखना ये जुमले फातिमा बिनत असद के, मालिक मैं कितना ईमान रखती हूँ बबे अम्बियाइक और जितने तूने नबी भेजे हैं उन पर भी ईमान रखती हूँ, बबे हक हाजल मौलूदी लजीब की बतनी और वो जो मेरे पेट में बच्चा है ना उस पर भी ईमान रखती हूँ। ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बीच में कहाँ से आ गए भाई? भाई अली का तस्करा होगा तो अबू तालिब का तस्करा तो होगा। अच्छा तो भाई अब उस बीवी के लिए, बीवी तो ईमान रखती है, तवज्जो रखना। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ फिक्र इस्लामी का, जो बड़ी बड़ी फिक्र है ना मुसलमानों में सब पढ़ी, कुछ कम कुछ ज्यादा ये ठीक पढ़ी थी, फिक्र हनफी फिक्र हम्बली फिक्र मालिकी फिक्र शाफी फिक्र जाफरी फिक्र ज़ैदी फिक्र ज़ाहिरी और ये सब पढ़ी। इन फेखों का एक मुत्तफ़िका फैसला तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। मुत्तफ़िका फैसला, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, ऐसा फैसला सुनाऊंगा। शिया फेका हो, सुन्नी फेका हो, कोई भी फेका हो, इस बात पे मुत्तफ़िक है। अच्छा भाई, तो अब दुआ मांगी, दुआ मांगी और दीवार टूटी। ठीक, बहुत तवज्जो है। दुआ मांगी, दीवार टूटी, शहजादी बिनते असद तशरीफ ले गई। अब वो ठीक है, वो उनका मसला है, उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन अब एक जुमला तुमसे सुनते जाओ ना, इन फेकहों ने बिल इत्तेहाक ये लिखा है कि बुलूग तक बच्चा बाप के मजहब पे होता है। ये मैसेज पहुंचा या नहीं? सबने बिल इत्तेफाक लिखा है कि बच्चा बाप के मजहब पे होता है। अगर अबू तालिब मुशरिक था तो यह मुशरिक के बेटे के लिए अपने घर की दीवार क्यों तोड़ रहा है? मरहला फिक्र, ये भी आसानी से सर हुआ, तो अब जरा सा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए इस मरहले फिक्र से। बच्चा बुलूग तक अपने बाप के दीन पर होता है, वो हो या ना हो, लेकिन हुक्म शरीयत वो लगता है जो उसके बाप का दीन पर हो। बात तो आगे हो गई ना, तो अब जरा सा और आगे बढ़ जाए। अबू तालिब के नऊज़ुबिल्लाह शिर्क के इल्ज़ाम को लगाने वाले इस बात पे गौर करें कि वो जो अकेला है, वो अबू तालिब के बेटे के लिए अपने घर की दीवार तोड़ रहा है। और आज भी जाओगे तो उस दीवार का निशान तुम्हें नजर आएगा। मैंने भी देखा और लोगों ने भी देखा होगा, यानी परवरदगार ने इस अलामत को पत्थर की लकीर बना के रख दिया। पत्थर की लकीर बना के रख दिया। भैया हम यहाँ तक तो आ गए और बड़ी आसानी के साथ आ गए, तो अब ज्यादा जहमत समाप्त नहीं दूंगा, हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अभी तो हमारे पास अगले दो घंटे हैं, उनमें देखेंगे मसले फिक्र क्या है। लेकिन अब यहाँ पे रुक के मुझसे एक जुमला सुनते जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत चली, उस शरीयत के अहकाम मक्के में और रहे और फलस्तीन की तरफ और रहे। इब्राहिम के दो बेटे इसहाक, उनकी शरीयत चली फलस्तीन की तरफ। इस्माइल, इनकी शरीयत चली मक्के में। ठीक है ना, मक्के की शरीयत का मुत्तफ़िका फैसला है कि जितने खून हैं वो नजिस हैं। जितने खून हैं, यानी अब मैं मुसलमान फ़िक़्हों की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीयत इब्राहिमी में जितने खून हैं वो सब नजिस हैं। तवज्जो रहे। अच्छा भाई, तो बीवी अंदर गई, घर क्या है? तहरा बैठी लिताएसी इब्राहिम मेरे घर को पाक रखना, इस्माइल मेरे घर को पाक रखना। ठीक है ना, बीवी गई, बच्चा पैदा हुआ। दुनिया की हर विलादत का तरीका है कि पैदा करने वाली माँ नजीस, पैदा होने वाला बच्चा नजीस, जो जिस जगह पे पैदा हुआ वो जगह नजीस। इसके अलावा अगर है तो तुम बता दो, दुनिया में जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, किसी नबी मूसा के घर में पैदा हो रहा हो या कहीं और पैदा हो रहा हो, बच्चा पैदा करने वाली माँ नजीस, बच्चा पैदा होने वाला नजीस, जिस मकाम पे पैदा हुआ वो नजीस। अब काबे के अंदर अली पैदा हुए, मुझे झूठी रिवायत दिखलाओ कि बिनते असद के बाहर आने के बाद काबा धोया गया हो। یہ وسائل ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی بزرگ شخصیت کا تذکرہ تو ضروری تھا جہاں تک میں تمہیں لے آیا, لیکن سلسلے کلام ہے, آگے بڑھتے رہیں گے اور اس شخصیت کو دیکھتے رہیں گے. شخصیت تو سمجھ میں آ گئی نا, عجیب بات ہے, خدا کی قسم عجیب بات ہے. اب دیکھو میں نے کبھی کہا تھا اور جی چاہ رہا ہے کہ چونکہ سلسلے کلام میں بات آ گئی تو تمہیں پیش کروں اور میں آگے بڑھ جاؤں. کعبہ دھویا نہیں گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر وہ بنت اسد نے غسل بھی نہیں کیا, ٹھیک. رسول اللہ ہے کہا چچی میری امانت دے دیں, بغیر غسل کا بچہ رسول کی گود میں ہے. سمجھو بھائی علی کی فضیلت سمجھو, یہ ہے کون. میں بڑے نازک مرحلے فکر پہ لے آیا ہوں. اچھا تو اب علی آگے گود میں, زبان بھی چوسی, غسل نہیں ہوا, غسل بعد میں ہوا جب گھر گئی. تو خانہ کعبہ میں غسل کی کوئی گنجائش نہیں تھی, ٹھیک. وہ بچہ وہاں پہنچا, اس کے پہنچنے سے پہلے جب گود میں لیا ہے تو بچے کی آنکھیں بند تھیں, اور جب اس نے محسوس کیا کہ میں رسالت کی گود میں آ گیا تو بچے نے آنکھیں کھول کے پہلی مرتبہ رسول کے چہرے کی یاد کی. کہنے لگے پیغمبر اس بچے سے کہ یا علی خصصتنی بالنظر الیہ, خصصت کو قبیل علم, علی تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھی اور اپنی پہلی نگاہ میرے لیے مخصوص کی تھی, تو اب میں جواب میں اپنا پورا علم تمہارے لیے مخصوص کر. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اقرا یا علی, علی اس کو پڑھو. بچہ گور سے بولا ما اقرا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا پڑھوں, میں نے توریت ابھی انجیل ابھی قرآن. دیکھو بھائی بچہ ہے دو دن کا, ٹھیک ہے نا, جب یہ 13 برس کا ہوگا تو رسول نبی بنیں گے, ٹھیک, اعلان کریں گے, اور جب اعلان کریں گے تو قرآن آنا شروع ہوگا. تو ابھی تو قرآن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نا, کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے قرآن میں جس کا. کہتا ہے یا رسول اللہ توریت سے پڑھوں, پڑھ سکتا توریت پہلے آ چکی ہے, انجیل سے پڑھوں, زبور سے پڑھوں یا قرآن سے پڑھوں. کہا یار تھوڑا سا قرآن سے پڑھ دو, تھوڑا سا قرآن سے پڑھ دو. سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی علی نے, سورہ مومنون کی, اور بھی سورہ ہیں قرآن میں لیکن سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں کی تلاوت علی نے فرمائی. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے سلسلے سند سے تو یہ روایت آئی ہے, میرے بزرگوں نے لکھی, ٹھیک ہے نا. وہ دوسرے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علی کے چاہنے والوں نے گڑھ لی. میں 3 دن کا بچہ, 4 دن کا بچہ کیا بولے گا, وہ عجیب دوہرا معیار ہے. 4 دن کے عیشا بول سکتے ہیں, عجیب معیار ہے نا, کہ 4 دن کے عیشا بول سکتے ہیں, 4 دن کا علی نہیں بول سکتا. تو بھائی میں ان بزرگوں سے, میں تو اتحاد میں مسلمین کا قائل ہوں, میں ان بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ مانو میرے علی کی فضیلت, مت مانو. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب رسول کی گود میں آ کے, رسول کے ہاتھوں پہ آ کے بچے نے تلاوت کی, مت مانو کہ یہ علی کی فضیلت ہے. جس نبی کے ہاتھ پر کنکریاں آ کے بولنے لگتی ہیں, اگر بچہ بولنے لگے تو تعجب کیا ہے. بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل میں آج اپنے سننے والوں کو روکنا نہیں چاہ رہا ہوں, بہت سیدھی سیدھی باتیں کر کے اور فلم کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی بچہ آ گیا رسول کے گھر میں آ گیا, بھائی بہت توجہ رہے, خدا کی قسم بہت توجہ رہے, لیکن اب دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا, یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں لے لو, ہم نے یحییٰ کو بچپن میں نبوت دے دی. کوئی روک سکتا ہے اسے؟ بھائی جب آپ اپنی شکل کے اوپر قادر نہیں ہیں, جیسی چاہے بنا رہے تو جس کو چاہے نبوت دے دے اور جس عمر میں چاہے دے دے. آتیناہ الحکم صبیا, ہم نے یحییٰ کو بچپن میں نبوت دے دی, جو کر سکتے ہو کر لو. اچھا وہ عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ, مریم کی گود سے بولے تھے نا, یاد ہونا چاہیے میرے محترم سننے والوں کو. कहने लगे बूढ़े यहूदी गोद में देखकर उस बच्चे को ईसा को, या उसका हारून माँ काना अबू किमरा सौरी व माँ काना तुम लोग के बगलिया, अरे हारून की बहन तेरी माँ अच्छी औरत थी, तेरा बाबू बहुत अच्छा इंसान था, ये कहाँ से ले आए, ये कहाँ से ले आए? वो इशारा चले मरियम ने इशारा किया कि इससे पूछ लो। अभी ईसा बोले तो नहीं, लेकिन मरियम को यकीन है ना कि बोलेगा। बहुत पढ़ा लिखा मरियम मेरे सामने बैठा। अब मेरी एक बात सुनो, और कभी कभी आओ तो रिकॉर्ड भी सुन लिया करो। अगर मेरी गोद में 3 दिन का बच्चा हो और आप मुझसे कोई मसला पूछे, ठीक, तो मैं कहूँ कि इस बच्चे से पूछ लीजिए। 2 सूरतें, या तो ये कि मैं पागल हूँ, एक सूरत तो ये बहुत सीधी बात, या मुझे यकीन है कि ये बोलेगा। तीसरी कोई सूरत हो तो आप बता दें। 3 दिन का बच्चा है मेरी गोद में, आपने सवाल पूछा मैं कैसे पूछिए, तो या तो बहुत ही बड़ी पागलपन की बात, और नहीं तो मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। ईसा बोले नहीं है, मरियम को पता है कि बोलेगा। मैं लत बदल दूं, ईसा अभी बोले नहीं, उनका बोलना गैब में है और मरियम को इस गैब का इल्म है। अब ये मुसलमान अजीब है, मानने पे आए पर नबी की माँ को आलमुल गैब मान ले, न मानने पे आए तो मेरे मोहम्मद को आलमुल गैब न माने। यहाँ तक तो बात माकूल हो गई ना, कि इशारा दिले, इशारा किया इसे पूछो आलू कैफ नुकल ले मन काना फिर महरे सरिया। यहूदी कहने लगे कि ये गोद का बच्चा क्या बोलेगा, गोद में अगर बच्चा हो तो उसके बोलने पर यहूदी को ताज्जुब होता है, मुसलमान को ताज्जुब नहीं होता। समझ रहे हो ना, कि अगर गोद में कोई बच्चा हो वो कहने क्या बोलेगा ये गोद का बच्चा, ठीक, ताज्जुब हुआ यहूदी को। जब ताज्जुब कर लिया यहूदी ने, काफला वो बच्चा गोद से बोला इन्नी अब्दुल्ला आतान या किताब और जालनी नबिया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। सुन लिया आपने, सवाल कुछ जवाब कुछ, बस ये महासल है मेरी गुफ्तगू का। भाई एतराज क्या था, नऊज़ु बिल्लाह मरियम के किरदार पर, ये बच्चा कहाँ से लाएं, तुम तो कुंवारी हो, ये बच्चा कहाँ से लाएं। अच्छा अब मरियम तो कुछ बोल ही नहीं, गोद का बच्चा कह रहा है कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, यही तो है भाई, हो गया आप अल्लाह के नबी, लेकिन आप पर तो एतराज ही नहीं है, एतराज तो आपकी माँ पे है। कमाल ये कि यहूदी जवाब को सुनकर मुतमईन होकर चले गए, यहूदी थे मगर इतना जानते थे कि जिसे अल्लाह अपना ओहदा दे के भेजे उसके सजे नसब में खराबी नहीं हुआ करती। बच्चा गोद से बोला यहिया आताना और हुक्मत सरिया, हमने बचपन में उसे नबूवत दे दी। तो ये जो छोटे छोटे नबी थे मेरे नबी के मुकाबले पर, किसी को गोद में दे दी, किसी को बचपन में दे दी, और वो जो कायनात का सबसे बड़ा नबी है उसे 40 साल इंतजार करवाया। तो कोई ना कोई मसीहत तो होगी, कहा भाई इसकी नबूवत में कोई कसर नहीं है, इंतजार है गवाह का। इंतजार है गवाह का कि गवाह आए तो मैं ऐलाने नबूवत करूं। पर यहाँ आज मैं गुफ्तगू को रोकूंगा, और एक रिवायत जिसकी सनद की जिम्मेदारी मैं कबूल कर रहा हूँ तो मैं हदिया करूंगा और तुमसे इजाजत ले लूंगा। गवाह आए तो मैं ऐलाने नबूवत करूंगा, लेकिन गवाह के बगैर ऐलाने नबूवत नहीं करूंगा। हमारे मुहद्दिसीन ने एक रिवायत लिखी है, क्या कमाल की रवायत है, कि क़यामत के दिन पैगंबर अर्श आज़म के नीचे مسند شفاعت پر مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے، علی لیوا اور حمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء و مرسلین ہوں گے سامنے عرش کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آواز آئے گی پیغمبرو تم نے تبلیغ کی تھی، کون کہے گا کہ نہیں کی تھی، سب پیغمبر کہیں گے پروردگار ہم نے تبلیغ کی تھی، آواز آئے گی کوئی گواہ لائے ہو، ایک دوسرے کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ ہماری نبوت کی اور ہماری تبلیغ کی گواہی مانگ رہا ہے، تو چلو محمد رسول اللہ کے پاس اور ان سے کہیں کہ آپ چل کے گواہی دے دیجیے، آپ نے بڑی آسانی سے اتنا ٹکڑا روایت کا سن لیا، لیکن اتنی آسانی سے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، ایک نبی دوسرے نبی سے کیا کہے گا، چلو محمد رسول اللہ سے کہے کہ ہماری نبوت کی گواہی دو، اب جھوٹی گواہی تو دلوائیں گے نہیں، انہیں یقین ہے کہ محمد نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا، اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں، ہے یا نہیں، اب ملا اگر یقین کرے تو میں کیا کروں، آدم نوح ابراہیم سارے، یا رسول اللہ ہماری نبوت کا گواہ مانگ رہا ہے اللہ، کہا چلیے گواہی دیجیے، ان کو یقین ہے کہ رسول نے ہمیں دیکھا ہمارے زمانے میں، ٹھیک، رسول مسجد شفا چھوڑ نہیں سکتے، اتر جائیں تو کچھ دیر کے لیے مسجد شفا خالی ہو جائے گی، تو اب خود تو جائیں گے نہیں، کسی کو بھیجیں گے، روایت کہتی ہے کہ کہیں گے آئین حمزہ آئین جعفر، بلاؤ بھائی حمزہ کو بلاؤ جعفر سیار کو بلاؤ، یہ دونوں آئیں گے اور رسول کہیں گے، بھائی توجہ ہے، رسول کہیں گے کہ جاؤ حمزہ اور جاؤ جعفر میری طرف سے گواہی دے دو کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک کر لی، ٹھیک، یہ روایت معصوم نے فرمائی، ٹھیک، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ علی کھڑے ہیں پیچھے لے آؤ الحمد لیے ہوئے کھڑے ہیں، زندگی میں کہا علی دعوت دے دو رشید کی، اچھا ہجرت کر رہا ہوں میرے بستر پہ سو جاؤں، پھر خواتین بنی ہاشم کو لے کر میری ہجرت کے بعد تم بھی مدینے آ جانا، علی تلوار لو مرہم کا سر لے آؤ، تلوار لو امر کا سر لے آؤ، علی یہ مشیدہ لے جاؤ بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ، سارے کام تو زندگی میں علی سے کروائے، سارے کام زندگی میں کروائے، علی لیوا الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں اور انبیاء گواہی مانگ رہے ہیں، تو بھائی پیچھے سے علی کو بھیج دیجیے کہ جاؤ علی گواہی دے دیا جاؤ، یہ حمزہ کو کیوں بھیجا اور جعفر طیار کو کیوں بھیجا، سوال ہے بڑا جینی ہے، سوال بہت جینی ہے کہ بھائی علی پیچھے کھڑے ہوئے زندگی بھر علی سے کام کروایا، بھیج دیجیے علی جاؤ میری طرف سے گواہی دے کے آؤ، نہیں علی کھڑے رہو، حمزہ تم جاؤ جعفر تم جاؤ، تو فرزند رسول راز کیا ہے، کہا بھائی راز تو بہت سامنے کا ہے، ابھی تو انبیاء سے گواہی مانگی گئی ہے کہ گواہ لاؤ، جب خود محمد سے گواہی مانگی جائے گی تو اس کے علاوہ کون جائے گا، بہت توجہ رہے تو محمد کی رسالت کا گواہ علی اور علی کی عبادت کا گواہ اللہ، جب سر پہ ضربت لگی ہے کچھ یاد ہے، علی کا جملہ خدا کی قسم عجیب و غریب ہے، یہ جملہ تاریخ عبادت میں یہ اکیلا جملہ ہے، تو زخمی سر کو مسجد کی مٹی پہ رکھا اور کہنے لگے پروردگارا جب قیامت کا دن ہو اور سارے ملائکہ مقربین کھڑے ہوں اور سارے انبیاء مرسلین کھڑے ہوں تو مالک تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، سر آ گیا نا، ہم شب ضربت میں جمع ہیں، دیکھو راوی کہتا ہے کہ سن 40 ہجری کا رمضان جب شروع ہوا، علی کی شہادت کا سن 40 ہجری جب رمضان شروع ہوا، تو علی کا طریقہ پہلے تو یہ تھا کہ نمازیں پڑھانے کے بعد تو عصر مغرب عشاء کچھ دیر بیٹھے بات فرماتے، اور جب یہ رمضان شروع ہوا تو 5 تاریخ کے بعد नमाज पढ़ाने के बाद ऋषि मुताहर को अपनी मुट्ठी में लेते और कहते यही वो महीना है जब अली की ये दाढ़ी अली के सर के खून से खिलाफ हुई। पांच या छह तारीख से अली का सिलसिला ये शुरू हुआ कि लोगों से कहना शुरू किया यही वो महीना है जब अली जिस महीने में शहीद किया जाएगा। 12 रमजान थी, नमाज के बाद बैठे हुए थे कि दूर से एक शख्स ने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम, वो भी जवाब दिया, आके बैठ गया, तेरा नाम क्या है? कहा अब्दुल रहमान। कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मुल्ली। कहा तू कबीले मुराद से है? कहा ये अमीरुल मोमिनीन, मैं कबीले मुराद से हूँ। कहा तुझे कुछ याद है कि तेरे बचपन में तेरी एक दाया थी यहूदी, वो तुझे खिलाया करती थी, तो तुझे ये कह के तमाशे मारती थी कि तू नाके साले को पै करने वाला है। तुझे ये कह के तमाशे मारती थी कि तू नाके साले की टांगों का काटने वाला है। तो इब्ने मुल्जिम, अगर तू अपने आप को बचा सके तो बचा ले, यही महीना है। देखो दुनिया कैसे बदलती है। कहा मौला मेरे लिए ये गुफ्तगू फरमा रहे? कहा हाँ। तो तलवार में रद्दी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपका कातिल हूँ तो आप मुझे कत्ल कर दी, अभी कत्ल कर दें। तो उन्होंने कहा कबले वकू वाकया हम किसी की को सजा नहीं दिया करते, अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। देखो जुमला सुनो अली का, अली के जुमलों को वजन करो। कहा मुझे कत्ल कर दी। कहा कि अल्लाह ने मुझे ये बताया कि तू मेरा कातिल है, ये नहीं बताया कि मैं तेरा कातिल हूँ। अजीब जुमला है। कहा इब्ने मुल्जिम अगर तू अपने आप को बचा सके तो बचा ले। कहा या अमीरुल मोमिनीन मैं सैर छोड़ जाऊंगा, चला गया यमन, चला गया कुछ दिन यमन में रहा। 17 रमजान की शाम को कूफे वापस आया और अब जो आया छोटा सा शहर है कूफा, लोगों ने देखा कि इब्ने मुल्जिम आ गया, अली से मिलने नहीं आया, अली से मिलने आया ही नहीं, अली इंतजार कर सके नहीं आया। इन 5-7 दिनों में मिजाज इतना बदल गया, उधर अली की वसीयतें सुरत के साथ होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे जानवरों का ख्याल रखना, मेरे गुलामों का ख्याल रखना, जिन यतीमों को बेवाओं को मैं रिस्क फराहम करता हूँ उनका ख्याल रखना, जनरली लोगों से कहा करते थे। शहलाबी उम्मे कुलसूम बयान करती हूँ कि 18 का दिन गुजर के रात को बाबा मेरे घर पे मेहमान थे। अब देखो उम्मे कुलसूम का बाबा पहचानते हो ना, आधा टुकड़ा नान का रोटी का, थोड़ा सा नमक और आधा प्याला दूध ये रखा गया। घूर के बेटी को देखा और देखने के बाद कहा कि बेटी क्या तू ये चाहती है कि तेरा बाप मौके से हिसाब में देर तक खड़ा है? बेटी तूने कभी देखा कि तेरे बाप ने एक वक्त में 2 सालन इस्तेमाल किए हों? तो मैं कुसुम ने नमक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कहा नहीं बेटी अली को नमक मरहू है। शहजादे बयान करते हैं 2 लक्मे खाए, 2 लक्मे खाने के बाद सब एक कदम थी, कुछ सूरों की तिलावत की, कुछ नमाजें पढ़ी, जब रात डूबी तो बाहर निकले सितारों को देखा, कहा ई वल्लाह ये रात तो वही है, ये रात तो वही है, ये कहकर अंदर आ गई। मैं भी पीछे आ गई, फिर बाहर निकले, फिर सितारों को देखा, फिर कहा कि ये रात तो वही है। मैंने पूछा कि बाबा ये किस रात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? कहा ये वो रात है जिसकी खबर मेरा भाई रसूलुल्लाह मुझे दे गया। कहा बाबा इस रात में होगा क्या? कहा बेटी तेरे बाप की दाढ़ी तेरे बाप के सर के खून के खिलाफ। ये कह के कांपने लगे। अब देखो ना बेटियों का तरीका है ना, तसल्ली ले बूढ़े बाप को। कहा बाबा आप ना घबराएं, आपके जवान बेटे हैं, हसन है, हुसैन है, और बच्चे हैं, आप मत घबराएं बाबा, आप परेशान ना हो। तो जानते हो क्या कहा? फरमाने लगे कि उम्मे कुलसूम तू तो जानती है ना कि मैं जिंदगी में किसी पहलवान से खौफज़दा नहीं हुआ, मैं किसी बहादुर से डरा नहीं, लेकिन आज उसकी बारगाह में जाना है जो मालिक है। आज उसकी बारगाह में जाना जो मालिकुल मुल्क है, जब्बार है। ये कहकर अपने कमरे में आए। बस आखिरी जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, अब ज्यादा मैं पढ़ना भी नहीं चाह रहा हूँ। अपने हुजरे में आए, फिर इबादत से मशगूल हुए। इतने में तलवारों की झनकारों की आवाज अली के कान में आई। कहा जाओ देखो बाहर कौन है। लोग गए आए, कहा यह अली हुज़ैफ़ा यमानी अपनी फौज का दस्ता लिए हुए नंगी तलवारें खेते हुए खड़े थे, 40 आदमियों का दस्ता। हाँ बुलाओ हुज़ैफ़ा को बुलाओ। फिर फरमाने के नहीं रुको मैं जाता। बाहर निकले, कहा हुज़ैफ़ा बात क्या है? मैं सुनना तो ये तकरीर तमाम कर दूंगा। हुज़ैफ़ा बात क्या है? कहा या अमीरुल मोमिनीन पहली रमजान से सुन सुन कर हम परेशान हो गए हैं कि इस महीने में अली मारा जाएगा, इस महीने में अली शहीद हो जाएगा। तो या अमीरुल मोमिनीन तू फ़ाय हमारी जात पर कि हम जिंदा रहे और आप मारे गए। या अमीरुल मोमिनीन हमारी जिंदगियों पर कि आप मारे जाएं और हम जिंदा रहें। फिर या अली हमने ये तय किया है कि अब रमजान की जितनी रातें रह गई हैं उतनी रातों में हम आपके घर का मुहासरा रखें और किसी को आपके घर के करीब आने न दें। दिन में सो जाए, रातों को हिफाजत करेंगे आपकी। एक मतलब घूर के हुज़ैफ़ा यमानी को देखा, कहा हुज़ैफ़ा मैं कौन हूँ? कहा मौला आप इमाम हूँ, आप मेरे बारियों बारिश हैं, आप मासूम हैं। कहा हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वापस जाओ। जुमले सुनो, आखिरी जुमले सुनो, हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वापस जाओ। हुक्म इमाम के बाद हुज़ैफ़ा रुक नहीं सकते थे, वापस चले हुज़ैफ़ा, वापस चले। हुज़ैफ़ा रावी हैं कि मैं जा तो रहा था हुक्म इमाम पर, लेकिन मेरे दिल में था कि कहीं ये वही रात ना हो, तो मैं मुड़ मुड़ कर अपने इमाम को देखता जा रहा था। आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो, तुमने गिरिया किया और मजलिस तमाम हो गई। मैं मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था कि कहीं ये वो आखिरी रात ना हो कि फिर मैं इमाम को देखने सकूं। हुज़ैफ़ा घर में आए, तलवार फेंकी, हुज़ैफ़ा की बीवी टहल रही थी। बस आखिरी जुमला सुनो, तुम रो चुके, हुज़ैफ़ा की सौदा टहल रही थी। उसने कहा हुज़ैफ़ा ऐसी खतरनाक रात में मौला को अकेला छोड़ दिया, कहीं आज की रात में कुछ हो गया तो क्या करोगे? सुनोगे? हुज़ैफ़ा ने क्या जवाब दिया? बस तुम रो चुके, तकरीर मेरी तमाम हो गई, आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। हुज़ैफ़ा अगर आज की रात मेरे मौला को कुछ हो गया तो तुम क़यामत में फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाओगे? कहने लगे हुज़ैफ़ा कि बीबी तसल्ली रख, मेरा मौला फातह खैबर है, मेरा मौला फातह खंदक है, फातह बदहुनैन है। किसी की मजाक है कि उसके करीब जा सकते? तो तसल्ली रख, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर हुज़ैफ़ा ने तकिये पे सर रखा, थोड़ी देर के लिए खुनूसगी आ गई। एक मतलब बीवी ने झंझोड़ के जगाया, हुज़ैफ़ा कोई आवाज सुन रहे हो? कोई आवाज सुन रहे हो? अब जो हुज़ैफ़ा ने आवाज सुन